नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कल में अमल में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुभास भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के भी चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने थोड़े ही दिनों में विश्व भर में भगवान नाम का कीर्तन सर्वत्र प्रचार किया, जिन्होंने लोगों का मध्यमांस मैथुन सब छुड़ाकर भगवान की भक्ति में जिन्होंने नियुक्त किया उनका कल्याण किया। तत्पश्चात मैं अपने कल के विषय पर आ रहा हूं। मैंने कल बतलाया प्राणी मात्र का चाहे जगत में कहीं भी हो, इस जगत के बाहर भी हो, चाहे पेड़ पौधे के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, देवता के रूप में हो, सबके सब आराध्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं नंदनंदन ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर हैं। जितने भी देवता देवी लोग हैं सब इन्हीं की आराधना करते हैं, और की तो बात क्या, दुर्गा काली गणेश शंकर जी ब्रह्मा जी सभी लोग इन्हीं की ही आराधना करते हैं और जगत में इन्हीं की ही पूजा का प्रचार करते हैं। इस ब्रह्म का एक बड़ा ही सुंदर मनोहर रूप है जिसको शंकर जी ब्रह्मा इत्यादि जी मन ही मन में ध्यान अपने हृदय में करते हैं, किंतु वो भी बड़ा मुश्किल होता है। क्या ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुक्कई रालक्षितोन सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम। तो वो ध्यान करते हैं तभी उनका चरण कमल ध्यान में नहीं आता। ऐसे ये हैं, ब्रज में गोप बालकों के साथ में खेले, ये गैया वेद की ऋचाएं हैं, उनको चराया पुष्ट किया और गोप बालकों के साथ में खेले, नंद और जसोदा का बात्सल्य स्नेह चखा और गोपियों के भी चरण धरे, उनके वशीभूत हो गए, उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सके वो कृष्ण, ऐसे ये भगवान हैं। कुछ लोगों की ये शंका है, यहाँ पर भी कुछ लोगों की शंका हो सकती है, भगवान निराकार हैं, उनका आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। जब जब भक्त लोग उनको पुकारते हैं तब हो सकता है कि वो नर रूप धारण करके जगत में आते हैं और फिर नर को छोड़ करके चले जाते हैं, किंतु यह बात गलत है। भगवान नर रूप धारण नहीं करते, उनका वह नर रूप ही नित्य है, वो अपने धाम से उसी रूप में जगत में उतरते हैं, इसलिए उनका नाम अवतार है। कृष्ण ये नित्य रूप उनका है, राम उनका यह नित्य रूप है, ये कभी ऐसा नहीं जो वो निराकार हैं आपसे रूप धारण कर लिया, वही सगुण है वो भी निर्गुण है। तुलसीदास जी ने ऐसा वंदना किया, वही निर्गुण इसलिए हैं कि जागतिक गुणों से ऊपर वाले हैं, और सगुण किस लिए, अखिल कल्याण कोणी कल्याणकारी जो गुण हैं उन सब वही उनमें रहते हैं, नित्य काल विराजमान रहते हैं। इसलिए वे सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं। लोग समझते हैं कि निर्गुण माने निराकार हैं और सगुण माने है जो रूप धारण कर लिया, ऐसी बात नहीं। प्रभु का रूप नित्य है, कभी कभी दया करके इस जगत में वो उतरते हैं उसी रूप से। इसलिए त्रेता युग में भी, सतयुग में भी, उसके पहले भी त्रेता सतयुग में, बस कृष्ण का वही रूप है जो पहले लेकर के आते हैं। करोड़ों बार कृष्ण जगत में आए हैं किंतु रूप उनका वही, अलग नहीं। राम का वही रूप जो उनका नित्य जगत में है उसी लेकर के उतरते हैं। ये दो नहीं है, कल ही मैंने बतलाया था, ये दो नहीं है, एक ही है। चंद्रकलाओं की भांति एक ही ये प्रभु हैं। उपासना के दृष्टि से, तारतम्य से, एंगल ऑफ उपासना विजन, वो ऐसे दिखते हैं, नहीं तो एक ही है। चंद्र एक आकाश में है किंतु चंद्र की और पृथ्वी की परिक्रमा इत्यादि के कारण जब पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है तो चंद्र में 16 कलाएं एक एक दिन में बढ़ती और घटती दिखती हैं, किंतु चंद्र अपने आप में सब समय पूर्ण है। उस स्थान में हम बहुत ऊंचे चले जाएं जहां पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती है तो वो चंद्र पूरा दिखेगा। इसलिए जब कृष्ण में उपासना के वजह से, जबकि उनमें वात्सल्य और मधुर स्नेह नहीं होता, उसको नहीं प्रकट करते रस, तब वो राम के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं कुछ रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह एंगल ऑफ भक्ति है, प्रेम है, किंतु है एक ही तत्व, अलग अलग नहीं है। इसलिए उनका रूप है केवल भारतीय शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में माना गया, ऐसा नहीं। हम तो इसको पीछे हम दिखलाएंगे आप लोगों को, पहले दूसरे बाइबल में, कुरान इत्यादि में जो लिखे हैं उसके अनुसार मैं आपको बतला रहा हूं। बाइबल में भी लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के अनुसार में गॉड ने मनुष्यों को बनाया। यदि उनका रूप नहीं है तो कैसे बनाया? क्या बाइबल से इस लाइन को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। विशेष करके जो यीशु मसीह हैं, यीशु नाम है ना, क्या जेसस हैं, ये क्राइस्ट के बेटे हैं, इसलिए जेसस क्राइस्ट कहलाते हैं। ये क्राइस्ट कौन है? कृष्ण से, कल मैंने बतलाया था। इसलिए जब कि बेटा का रूप है तो बाप का बेटा रूप नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए जरूर उनका रूप है। इसलिए मैंने कल बतलाया जब बाप में यदि रूप नहीं है तब बेटा में रूप कहां से आ गया? इसलिए विश्व सब उन्हीं से निकला है, तो विश्व में जितने भी रूप हैं सब उनमें है, किंतु हम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए साधन के द्वारा जब हम उनको देखेंगे, हमारी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी, तो देखेंगे कि बड़ा सुंदर उनका दिव्य रूप है। हमारे शास्त्रों के अतिरिक्त मुस्लिमों के कुरान में भी है ऐसा, वो भी अस्वीकार नहीं कर सकते। इन्ना लहा खलाका मैन सूरत ही, सूरत मैंने क्या रूप, खुदा का रूप है, खुदा के बंदे होते हैं। यदि खुदा के बंदे हैं तो प्रभु का रूप नहीं होगा, प्रभु का रूप नहीं होगा। वे सृष्टि के बाद में, प्रलय होने के बाद में सब बंदों को बुला करके उनका विचार करते हैं। कौन विचार करता है? उनके कर्म के अनुसार में फल देता है, तो उसका रूप तो जरूर होगा, उसकी प्रतिनिधि सभा होगी, मंत्रिमंडल होगा, सब उनकी व्यवस्था है, उसी छाया ये जगत है। इसलिए उनका रूप जरूर मानना पड़ेगा, है ना? नहीं तो रूप की पोटेंसी यदि ब्रह्म में नहीं है तो फिर कैसे होगा ये सब, कैसा कहां से आएगा? आम की गुठली से ही आम पैदा होता है। चावल का पौधा लगा दो बीज, गेहूं जो, तो उसे आम नहीं हो जाएगा, आम से इमली नहीं होगी, आम की गुठली से आम ही होगा। तो जब आम से पेड़ हुआ है तो समझो उस गुठली में उस चीज की रूप की पोटेंसी है, अभिव्यक्त नहीं थी, जहां मट्टी में डाल करके पानी दो तो आम से आम का पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही जितने भी जीव हैं ये सब यदि प्रभु में नहीं रूप है तो ये कहां से आया। अब इसको हम अपने आप शास्त्रों से भी बतला रहे हैं। दूसरी बात, ये बौद्ध धर्म हमारे हिंदू धर्म से ही, भारतीय संस्कृति से ही निकला। उन्होंने भगवान का ध्यान नहीं मिला तो उन्होंने कहा यह भगवान का रूप नहीं है, ये शून्य से जगत पैदा हुआ, इसलिए उसको शून्यवाद कहते हैं। और मरने के बाद में सब जगत का प्रलय होने पर शून्य में मिल जाएगा, तो इसका मतलब हुआ नथिंग से यह सबकी सृष्टि हुई। किंतु बात ऐसी नहीं, नथिंग से आज यदि सृष्टि होती तो कितनी सृष्टियां हो जाती, कितने आदमी जैसे कितने ये सब हो जाता। किंतु आज से मनुष्य से और दूसरों प्राणियों से कोई दूसरा चीज नहीं हो सका। लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, मंकी से हम नहीं बने हैं, हम बानर से मनुष्य नहीं हुए हैं, पहले से ही मनुष्य है, भगवान ने ऐसी सृष्टि की है। इसलिए ये डार्विन की थ्योरी एकदम गलत है, कुछ दिनों के बाद में देखेंगे एकदम गलत है। इसलिए हमारे बौद्धों में देखिए, यदि उनका रूप नहीं तो बुद्ध देव का रूप कैसे बनाया, उनकी पूजा क्यों क्यों करते हैं। जैनियों में देखेंगे, जैनी लोग भी 20-25 फुट की मूर्ति रखते हैं। क्यों रखते हैं, यदि भगवान का रूप ही नहीं है तो चर्च बनाने की जरूरत क्या, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या, खुले आकाश में और उनका पूजन करके, पूजन करेंगे तो उनका आकार है ही नहीं है तो मस्जिद में कहां से आएंगे। इसलिए ऐसी बात नहीं, हमारे जो पूर्व युग सनातन धर्मावलंबी हैं भगवान के सनातन रूप को मानते हैं, सच्चिदानंद रूप को। वो सच्चिदानंद क्या है, सत माने उनका यह शरीर है नित्य और सत्य है, परम सत्य है, त्रैकालिक सत्य है। और चीत, चीत माने ज्ञान, ज्ञान माने ऊपर बढ़कर के भाव प्रेम बन जाता है, वो सबके आधार है। और आनंद जिसके द्वारा जगत के सब लोगों को आनंद देते हैं और स्वयं आनंदमय है और आनंद स्वरूप भी है। यदि उनमें आनंद नहीं होता तो ये प्राणी कहां से आनंदित हो सकते थे। यदि ब्रह्म हृदय में न रहे, आत्मा निकल जाए जरा परमात्मा से देखो तो शरीर कहां रह जाए, कहां आनंद है। इसलिए आनंद यदि है तो उन्हीं में आनंद। एक समय की बात है, सत्यु की बात है, तुलसीकृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को लिया गया है। एक बार शंकर जी सती को लेकर के, अपनी पत्नी सती जी को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत में था, समुद्र के किनारे। अभी भी वो अगस्त आश्रम है। हम लोग जब दक्षिण भारत में तीर्थों का दर्शन करने के लिए हम गए थे गुरु जी के साथ में, अगस्त ऋषि के आश्रम को देखा है हमने। उन्हीं का दूसरा नाम कुंभज भी है। तो वो शंकर जी उनके पास में गए और दोनों मिलकर के भगवान रामचंद्र जी की कथाओं का वर्णन करते हुए, तत्वों का वर्णन करते हुए बड़े आनंद से कुछ दिन तक वहीं पर रहे शंकर जी अपनी पत्नी के साथ। कुछ दिनों के बाद में, हरि कथा होने के बाद में वो लौट रहे थे। और इतने में रामचंद्र जी महाराज दशरथ जी का आदेश और कैकेयी का आदेश पालन करने के लिए दंडकारण्य में ऋषि जैसा जटाजूट बनाकर सीता जी और अपने भैया लक्ष्मण जी को लेकर के घूम रहे थे। इतने में रावण एक दिन मारीचि की सहायता से सीता जी को हर ले गया। अब तो राम उनके विरह में तड़फड़ा रहे और हर्षिते प्रिय तुम कहां हो, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और पेड़ों से भी उनको अंक में लेकर कहते हैं कि हमारी प्रिया जी को देखा, वो जाती थी तो तुम्हारे यहां से फूल चुनती थी, गोदावरी तुमने सीता जी को देखा, हिरणों से पूछा हिरण वो तुम्हारी तो बड़ी प्रिय थी, हमारी सीता जी को देखा, और रो रो करके विलाप कर रहे हैं। उसी समय शंकर जी सीता सती जी को लेकर के सोचा भगवान दंडकारण्य में पधारे हैं और विलाप कर रहे हैं, उनका दर्शन हो जाए तो अच्छा है, ये कहकर उनके दर्शनों के लिए दंडकारण्य में पधारे। वहां देखा जो राम तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे, क्या करूं ना करूं कुछ समझ नहीं रहे, उनके पीछे पीछे डोल रहे हैं। शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, एकदम प्रेम में भर गए, उनके रोमांच हो आए और दूर से उनकी लीला में कोई व्यवधान न पहुंचे, बाधा न पहुंचे, इसलिए दूर से उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी दूर से ही स्तव स्तुति की। और स्तुति करके जब लौटने लगे तो सती जी ने उनसे कहा, प्रियतम आप किसकी वंदना कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम अपने परमा आराध्य परब्रह्म उनको मैं सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहा हूं, वह हमारे आराध्य देव हैं। सती जी ने कहा जो समस्त संसार का कारण है, जो कि अज है, अज माने जिसका जन्म नहीं है, जो समस्त कारणों से अतीत हैं, अनीह हैं, अनीह माने संसार से कोई आसक्ति नहीं, जो कि गुणों से अतीत हैं, व्यापक ब्रह्म हैं, व्यापनोति इति ब्रह्म, सब जगह व्याप्त है, ऐसा कोई भी प्राणी और पदार्थ नहीं है जिसमें वो नहीं है, ऐसे प्रभु ये नर रूप लेकर के इस जगत में आए हैं, तो भी यदि नर रूप लेकर के विष्णु भी आए तो वो अज्ञानी नहीं होते। उन्हें मन में सोचा जी जैसे शंकर जी सब कुछ जानने वाले हैं तो इनको अज्ञान से कहां गया, ये दशरथ महाराज का लड़का ये कैसे व्यापक ब्रह्म हो सकता है, ये अपनी स्त्री के मोह में बिल बिला करके रो रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है सबसे और रो रहा है, अज्ञानी ये ब्रह्म कैसे हो सकता है और ब्रह्म का रूप कैसे होगा, वो तो व्यापक है, यदि एक शरीर धारण करेगा तो सब जगह कैसे व्याप्त हो सकता है, इसलिए ब्रह्म कदापि नहीं हो सकते। किंतु शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सब देवता लोग इसको मानते हैं, ये सर्वज्ञ है, तो ये झूठ तो बोल नहीं सकते, और उधर में व्यापक ब्रह्म ये जन्म कैसे ले सकता है और कैसे रूप हो सकता है, इसको अज्ञानता कैसे, ये नहीं जानता जे रावण हर करके ले गया है, मैं तो जानती हूं, फिर ये नहीं जानता और रो रहा है, तो ये ब्रह्म कैसे होगा, शंका आई। जब शंका हुई शंकर जी समझ गए, समझाया देखो शंका मत करो, तुम तो हमको गुरु भी मानती है ना पति के साथ साथ में, गुरु के बातों में अविश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत तरह से समझाया उनके चित्त में नहीं आया। शंकर जी ने देखा ये भगवान की ऐसी विचित्र माया है जो बड़े बड़े लोगों को नारद तक को भी मोह में डाल देती है, इसलिए क्या करूं, समझाने पर नहीं समझ रही, को कर तर्क बढ़ा वही साखा, अब तर्क करके मैं क्या करूंगा, अब देखें प्रभु की जैसी इच्छा होगी, ऐसा समझ करके एक वट के पेड़ के नीचे में बोले, प्रिय तुमको यदि बोध नहीं होता है, हमारी बात नहीं अच्छी लगती और उस पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, यहीं पर तो है, परीक्षा ले लो और मैं तब तक के लिए इसी वट वृक्ष पर यही छाया में बैठ रहा हूं, तुम जल्दी से लौट आना परीक्षा लेकर के, वो जल्दीबाजी भी नहीं है, परीक्षा तो ले लो। ऐसा कह करके शंकर जी बैठ गए और पार्वती को उनको सती जी को कहा जाओ पर, उन्होंने सोचा चली गई, सोचे कैसे परीक्षा ली, परीक्षा एक अच्छी बात होगी ये कि मैं यदि किसी प्रकार से सीता जी का रूप बना लूं और उसके सामने जाऊं तो यदि मनुष्य होगा तो सुहासी से तू मिल गई और हमको आलिंगन करने के लिए आएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मनुष्य है, ब्रह्म नहीं है। और यदि सचमुच में ब्रह्म हुआ तो हमें पहचान जाएगा कि मैं सती हूं, शंकर जी की पत्नी हूं। ऐसा सोच करके क्षण मात्र में ही अपना सीता जी का रूप, वैसे ही श्रृंगार जैसे कि रावण हर करके ले गया था, वैसा ही एकदम रूप बना करके और सामने में खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने देख करके भी देखा नहीं और उस ओर से रोते हुए दूसरी तरफ में चले गए, तो ये भी दूसरी तरफ से वहीं पर सामने पहुंचे। तो जिधर राम रोते हुए जाते हैं उधर ही वो जाकर के खड़ी हो जाती हैं। तो राम ने हाथ जोड़ करके उनको देख करके प्रणाम किया, माता जी आपको मेरा सश्रद्ध प्रणाम है, आप अकेली डोल रही हैं, हमारे वृष केतु शंकर जी किधर गए, आपको अकेली तो नहीं घूमनी चाहिए थी। अब सुनते ही उनके होश उड़ गए, कैसे जान लिया, समझ लिया हमको, तो जरूर ये ब्रह्म होगा, किंतु अभी शंका पूरी रूप से नहीं गई, किंतु ये जान नहीं सकता था ये जरूर ब्रह्म है, ये तो ठीक है। और वो लौटी शंकर जी के पास में जा रही, उनको क्या जवाब दूं, कैसे मैंने परीक्षा ली, क्या थी। इतने में राम को उन पर दया आ गई, इसको कुछ अनुभव करा दूं, ये भक्त तो है, इसको माया थोड़ी सी व्याप गई, इले थोड़ी सी अपनी इसको प्रभाव जरा दिखला दूं। ऐसा सोचते ही जो वो माया के द्वारा उन्होंने ऐसा किया, जो सती जी जो जा रही थी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी, ने मैंने तो ये काम बहुत गलत किया, ने ऐसे सोच चली जा रही। इतने में देखा जिधर देख रही हैं उधर ही में राम लक्ष्मण और सीता, फिर इधर देखा जो कुछ दिखाई पड़ने लगा, इधर उधर बाहर भीतर सर्वत्र दिखा दिया राम लक्ष्मण सीता, और सीता जी उनके साथ में मुस्कुराती हुई, और सब जितने देवता लोग हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, विष्णु भी कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि मुख वाले ब्रह्मा, और उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं। अब तो देख करके और भी चकित हो गई, शंकर को भी देखा वो भी उनकी स्तुति कर रही हैं। फिर आंख ऐसे मलाज जैसे देखें तो जो मैं स्वप्न देख रही हूं, क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता। जब फिर आंख खोल करके देखा तो देखा जय राम वही करें हासिते हा प्राण प्रिय साथे, और रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं। अब तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो लौटी, शंकर जी वहां पर बैठे हुए थे, शंकर जी के समीप में जब गई तो शंकर जी ने उनसे पूछा उत्कंठापूर्वक, प्रिय कुछ परीक्षा आपने की, यदि परीक्षा की तो हमको सच सच बतला दो। तो वो डर गई कुछ, बोली जी नाथ मैं क्या उनकी परीक्षा लूंगी, आप मेरे गुरु हैं, आपने कह दिया बस, अब मैं समझ गई कि ठीक वो परब्रह्म है। झूठ बोली, गुरु से कदापि झूठ मत बोलो, एक विषय को छिपाने के लिए तुम 10,000,000 बार झूठ बोलेगा। एक तो गुरु के प्रति विश्वास ऐसा जो गुरु कह दे जो ठीक है, गुरु भी ऐसा होना चाहिए, गुरु जैसे तैसे नहीं होने चाहिए, पानी पियो छान कर गुरु करो जान कर। अरे एक पैसा की हड़िया लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो एक लकड़ी से बजाते हैं, ठन ठन कर रही कि खन खन कर रही है, खन खन करती है तो फूटी हुई है, मतलब दो पैसे की हड़िया, और ठन ठन करती है तो ले आओ। प्रत्येक चीज को देखते हैं हम लेते समय में, और गुरु करते समय जो कह दिया जैसे ये गुरु है महा मुक्त गुरु है, पैसे के लिए दौड़ते हैं दिन रात, 10 स्त्रियों के पीछे भागते हैं, शास्त्र की दो एक बातों को रट लिया है केवल, और तोते जैसे बोलते हैं ये गुरु गुरु नहीं है, भगवान की अनुभूति होगी, सारी शंकाओं को दूर करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणों को वो जानते हैं और निरंतर भगवान नाम करते हैं,
पैसे के प्रति आसक्ति नहीं होगी, यदि है तो उसको गुरु मत बनाओ, खबरदार। यदि पैसा चाहता है, यदि पैसा भी मिला तो उसको भगवान और भक्तों की सेवा में लगा देगा साथ ही साथ में, और उसको किसी विषय में शंका नहीं होती, कभी उसका पतन नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। जो गुरु हो गया, पतन हो गया तो गुरु क्या रहा, इसलिए गुरुओं का पतन नहीं होता। इसलिए गुरु जी से झूठ बोली, एक तो पहले तो उनके बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पाला अपराध, और दूसरी बात गुरु के वचनों में कभी अविश्वास न हो, नहीं तो गुरु से वो शिष्य गिर जाएगा। और दूसरी बात गुरु से झूठ मत बोलो, हृदय को खोल करके रखो, यदि कोई चीज अपराध भी हो गया तो उनके सामने रख दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तीनों ने झूठ बोल दिया, ये नाथ मैं क्या उनकी परीक्षा लूंगी, आप जो कहा वो ब्रह्म ही है। शंकर जी ने ध्यान लगा, देखा अरे ये तो सीता जी का रूप धारण किया, वो तो मेरी आराध्या देवी है, मैया है, तो मैया का रूप बनाया इस शरीर से, ये इस पाप से तो उद्धार होना बड़ा कठिन है। अब इस शरीर से हमारा उनका संयोग पति और पत्नी के रूप में नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये हमारी मैया बन करके रहेंगी। बस मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि आज से इनको मैया को अपना बनाया और पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। जो ही उन्होंने मन में संकल्प किया शंकर जी, क्यों ही भगवान की वाणी हुई और आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई, शंकर आप भक्ति की मूर्ति स्वरूप हैं, वैष्णवों के आप जगत गुरु हैं, वैष्णवों में आपके सिवा ऐसी कौन प्रतिज्ञा कर सकता है। शंकर जी ने सोचा हमारी प्रिया है और सब प्रकार से गुण है, इसे इसको छोड़ नहीं सकता, त्याग तो हमें कर देना चाहिए था, मैं त्याग नहीं कर सकता, किंतु साथ ही साथ अब पत्नी पत्नी का जो प्रेम था वो प्रेम नहीं रहेगा, उसको मैया के रूप में हमको ग्रहण करना पड़ेगा। देवताओं की जब पुष्प वृष्टि हुई तो सती जी ने उनसे पूछा, प्रिय प्रियतम आपने क्या प्रतिज्ञा की, तो वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप चलते आए और भगवान की लीला कथाएं उनको समझाते सुनाते हुए आए, कैलाश आश्रम में बैठ करके अपने आसन पर बैठ करके और समाधिस्थ हो गए और 88,000 वर्ष तक एकदम समाधिस्थ हो गए। अब इन्होंने देखा जैसे ये अब इस शरीर से मैं इनकी पति पत्नी के रूप में मैं नहीं सेवा कर सकती, हाय हाय मैंने बहुत बड़ा भारी अपराध किया, गुरु के चरण में दो दो अपराध किए, बतलाइए ये कोई अपराध सा नहीं है, किंतु ये और यदि कोई गुरु को धोखा दे, गुरु को मारे, गुरु की निंदा करे, तो उसकी क्या गति होगी, और यदि गुरु ही इसका पात्र है, वही करता है ऐसी निंदा का बात, तो भी उसकी निंदा मत करो, उसका अपने आप विनाश होगा। एक तो ऐसा गुरु मत करो, और यदि गुरु कर लिया उस समय जाना नहीं, अब समझ रहे हैं उसको तत्क्षणात छोड़ करके शुद्ध परमार्थी गुरु करो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सती जी ने सोचा हमारा अपराध हो गया, अब क्या करूं, उन्होंने सोचा अब इस शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं, इस शरीर को जला करके भस्म करके दूसरे शरीर में हम आकर के इनकी तपस्या करके फिर इनकी सेवा करेंगे, इस रूप में अब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सेवा तो करती रही, 88,000 वर्ष के बाद में जबकि वो समाधि से उठे तो फिर वही हरि कथा भगवान की लीला कथाएं तरह तरह की सुनाने लगे। और इसी बीच में एक दिन आकाश मार्ग से बहुत से विमान जा रहे थे, युग भी बदल गए, जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा जी हमारी ये सब बहनें अपने पतियों के साथ में जा रही हैं हमारे पीहर में, पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया है, वो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, सबको बुलाया किंतु शंकर जी को और पार्वती जी को इनको सती जी को नहीं बुलाया। इनकी इच्छा हुई इसे मैं भी चलूं, मेरा मन नहीं लगता, पति से कहा शंकर जी से आप यदि आदेश दें तो अपने पिताजी के यज्ञ में मैं भी जाऊं, दो चार दिन रह करके फिर आ जाऊंगी। शंकर जी ने कहा बात तो अच्छी है किंतु देखो गुरु के यहां मित्र के यहां पिता माता के यहां
बिना बुलाए जा सकते हैं,
किंतु यदि वो विरोध करता है तो मत जाओ। वो हमसे विरोध करता है, वो समझता नहीं है मुझे, हमको साधारण मनुष्य समझता है। जब किसी समय में देव सभा में वो गया, शंकर जी वहां पर बैठे थे, सारे देवता लोग उठ करके खड़े होकर के उसके पिताजी सती जी के दक्ष प्रजापति सब लोग उसको प्रणाम किया, किंतु शंकर जी उठे नहीं। तो इसने कैसे पागल को, भूत पिशाच की पूजा करने वाले को अपनी कन्या का दान मैंने किया, जो पिता को भी सम्मान नहीं करना जानता। शंकर जी समाधिस्थ में उस समय थे, भगवान चिंतन कर रहे थे, उसको बड़ा गाली गलौज किया। शंकर जी की समाधि खुली तो देखा जैसे ये तो मुझे गाली गलौज बस समझ नहीं रहा है। जो भगवान को प्रणाम करता है वो तो विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम कर लिया, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, मैं तो सब जीव मात्र को प्रणाम करता हूं, मेरे भाव को नहीं समझा। उसने गाली गलौज किया, तब से शंकर जी से विरोध मानने लगा। इसलिए सबको बुलाया किंतु शंकर जी को नहीं बुलाया, और अपनी बेटी को भी जो सबसे सुंदरी और गुणवती थी, रूपवती थी, छोटी लड़की थी, उसको नहीं बुलाया। किंतु इनका मन नहीं मान रहा, शंकर जी के मनाने पर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा जी मैं तो चलती हूं, अकेले पैर पटकती हुई चली। शंकर जी ने पीछे से अपने कुछ अनुचरों को उनको भेज दिया और अपनी नंदी को भेज दी, उस पर बैठा करके वो लोग ले गए। जब वहां पर उतरी तो देखा क्या, सब देवताओं को यथायोग्य आसन और सब मिले हैं, सबको आदर किया जा रहा है, यज्ञ का भाग भी आ रहा है और शंकर का कोई भाग नहीं। शंकर जी का अपमान किया जा रहा है और दक्ष प्रजापति के डर के मारे उसकी बहनें भी आज इनसे नहीं बोली जो बड़ा प्यार करती थी। केवल एक मैया आई उससे मिलने के लिए, वो भी छिप लुक करके आई और उसका अपमान किया गया। पिता खुद देख रहा है सामने, उसे बुलाने पीठ फिरा दिया, कहो ये शंकर के वजह से मेरा भी अपमान कर रहे हैं लोग। अब सह नहीं सकी, यज्ञ हो रहा था, स्वाहा स्वाहा हो रहा था, लाखों लोग वहां पर थे और सबके सामने में उन्होंने कहा जैसे एक तो शंकर जी की मैं पत्नी के रूप में अब रही नहीं, इस शरीर को तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, और दूसरे पिताजी ने उनका अपमान किया और मेरा भी अपमान किया। अच्छा तो ठीक है, बैठ गई ऐसे और ऐसा समाधि के शरीर से आग निकली और क्षण मात्र में जल करके खाक हो गई। शंकर के दूत थे, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अंत में शंकर के दूतों ने आकर के उसका सिर भी काट लिया। ये सब तो आगे की बात। फिर पीछे से बकरा का सिर उसके ऊपर में दे दिया गया। शरीर तो मनुष्य का और सिर किसका, बकरा। माने क्या, बकरी के बिना जी नहीं सकता, उसकी दुलत्ती खाएगा, उसके पीछे डोलेगा, उसका दूसरा कोई काज कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, ऐसे कामुक व्यक्ति को बकरा कहा जाता है। तो इस तरह से जो भगवान का भजन नहीं करता संसार को समृद्ध करने में दक्ष हो सकता है, दक्ष माने चतुर, किंतु भगवान का भजन नहीं करता वो मनुष्य बकरे के समान है। यहां तक कहा गया वो गधे के समान है, धर्मे नहीं ना पशु भी समान, खौर कहा गया उनको। इसलिए जो सब काम में चतुर हैं भगवान का भजन नहीं करते, आत्मानुभूति नहीं है मनुष्य शरीर लेकर के भी, तो वो सब लोग पशुओं के समान है। तो वो जल करके खाक हो गई। फिर दूसरे जन्म में पर्वत हिमाचल की लड़की होकर के आई, फिर तपस्या की और फिर शंकर जी से पीछे से शादी हुई, तो शंकर जी ने उनको ग्रहण किया। ये हैं कौन, विश्व की सृष्टि करने वाली हैं उमा जी, शंकर की अर्धांगिनी हैं, सब जुगों विभूतियों और गुणों से युक्त हैं, ये सीता जी की अंश हैं, ऐसे समझो। तो जबकि सती जैसी लोक हुई, अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया और सोचा जब जो व्यापक ब्रह्म है उसका रूप नहीं है, वो कैसे मनुष्य शरीर में आएगा, फिर तो जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, इसे कदापि ये ब्रह्म नहीं, ये संदेह हो गया। इसलिए उनकी ये गति हुई। इसलिए समझो कि हमारे शास्त्रों में ऐसे ही लिखा, ये भगवान का रूप जो होता है सच्चिदानंद होता है, सदा होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, आंखों से ओझल हो जाते हैं
छिप जाते हैं, जैसे चार सवार घोड़े पर चढ़ करके आ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ में दौड़ रहे हैं। हमने देखा यहीं से जंगले से या दरवाजे से देखा जी घोड़े जा रहे हैं, घोड़े चल करके फिर आगे चले गए। तो घोड़े क्या मर गए? अरे हमारे आंखों के सामने आए, उनको देखा, इसके बाद में नहीं देखा, इसलिए मर नहीं गए, घोड़े आगे दौड़ रहे हैं। ऐसे ही भगवान की लीलाएं हैं, कुछ समय के लिए प्रकट करते हैं जीवों के कल्याण के लिए, फिर इस रूप को लेकर के चले जाते हैं। हम लोग इन आंखों से देख नहीं सकते, अभी भी भगवान हैं, उनकी लीलाएं हो रही हैं, किंतु हमारा हृदय उतना उन्नत नहीं है, साधन नहीं है जो उनको देख सके। अरे उसकी तो बात दूर छोड़ो, दूध में घी दिखता है, मथने से दिखेगा, वो भी मक्खन होगा, मक्खन को आग पर पिघलाओ तो घी निकल आएगा। सरसों में तेल है, दिखता है, थोड़ा सा घानी में लगाओ, पीस दो, देखो जिसमें तेल निकल आएगा। ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड के अणु अणु में भगवान हैं, उनका रूप है, हमारा भी रूप है, ने? अभी माया के द्वारा से ये ढका हुआ है। एक दूसरा और उदाहरण समझिए, एक समय की बात है, गरुड़ जी को जानते हैं, भगवान के वाहन हैं नारायण के, हाँ छोड़, अच्छा एक कीर्तन कर दो तो, आपके लड़के आए, हाँ आ जाए एक भजन सुनाए तो, तुम ही आज तो बस थोड़ा सा बीच बीच में कीर्तन का पूर्व देने से सब लोग फिर ताजा हो जाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, हाँ तो बजाइए, आ जाइए उधर में सामने।
राधे राधे
नाम, वृंदावन की कुंज गली हो, पारसी में कुंज गली है, पारसी में प्रेम गली है, पारसी में दान गली मान गलियां हैं, चारों एक जगह मिली हैं, बड़े सघन कुंज हैं, चलने में कपड़े पकड़ लेंगे। कहती है कोई या कह रहे हैं कोई साधक, आ राधे राधे उस कुंज में जाऊं, मैं अपने को तन मन को सुधि बिखर जाऊं, भूल जाऊं अपने को, उस समय में मुख से राधे राधे नाम निकलता हो, और उस समय में घूमते घामते राधा जी में तन्मय हो जाऊं और मेरे प्राण निकल जाए तन से। वृंदावन जमुना का किनारा है, कोयल कुहक रही, मोर नाच रहे हो, कदम्ब की छैया हो, उसमें ये कांटेदार कुंज हो, और राधे राधे कहते हुए राधा जी का दर्शन झांकी करते हुए मेरे प्राण निकल जाए, कितना रस है इसमें। और यदि आप लोगों को कोई आए कहेंगे जी अरे हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म है, इसमें क्या आनंद है, ब्रह्म ब्रह्म बोगस बातें, कोई आदमी ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्म मिल करके ब्रह्म जैसा अभिशाप और कोई जगत में नहीं है, अरे ब्रह्म हो गया तो पत्थर बन जाएगा, उसकी अनुभूति नहीं रहेगा, बातचीत करने के लिए कोई नहीं रहेगा, प्रेम करने के लिए तो ब्रह्म बन गया, क्या बन गया, निराकार निर्विशेष निरंजन अव्यक्त अनादि निर्गुण बन गया। एक पत्थर तो उसे अच्छा है, उसका रूप तो है, उसे तो कुछ काम हो जाता है, उस पर सिल डोढ़े से कुछ कर लेते हैं, उस ब्रह्म से क्या, जो जिसमें दया नहीं है, जिसमें रूप नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, अरे पत्थर में तो कुछ गुण भी है, उसमें कुछ गुण नहीं है, ऐसा ब्रह्म होना कदापि अभिसंपात है। किसी को अभिसंपात लगता है भगवान असुरों को मार करके ये दुर्गति देते हैं, जाओ ब्रह्म बन जाओ, एनिहिलेशन टू आत्मा है ये, खबरदार मत मानो, कोई आए तो दूर से नमस्कार करो, महाराज जी आप राधे राधे नाम सुनाइए तो सुनेंगे हम लोग, और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ब्रज की कृष्ण की लीलाएं, राम की मधुर लीलाएं हम सुनना चाहते हैं, ये ब्रह्म ट्रम्ह हम नहीं जानते हैं, ये ब्रह्म कहाँ का कौन है, उसको गोपियों ने चिथड़ी बना करके यमुना में फेंक दिया, और वो चिथड़ी चलते चलते गुदड़ी यमुना से गंगा में मिली, और समुद्र के नमक में जाकर के मिल करके वो नष्ट होकर के चली गई। भारतवर्ष में ब्रह्म नहीं, कृष्ण के दास हम हैं, राम के दास हैं, ब्रह्म ट्रम्ह ये कौन कहां से आ गया, इसलिए वृंदावन में भक्तों के ब्रह्म ज्ञान की बिक्री नहीं होती। हम वही ये प्रेम का प्रसार टोकरी में ले आए हैं, राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम। यदि आप लोग लेंगे तो सस्ते में दे दूंगा, और नहीं तो अपना माल इंडिया में फिर मैं वृंदावन में लेकर के लौट जाऊंगा, ऐसे तैसे नहीं दे दूंगा। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। भगवान का नाम करना चाहेंगे, भक्ति करने, जीवन आपका सुधर जाएगा, सुखमय बन जाएगा। ब्रह्म में भक्त लोग ब्रह्म का यह देने पर भी ब्रह्म की पदवी मुक्ति नहीं लेना चाहते हैं। अरे वृंदावन में तो मुक्ति जेवर बटती है और उसे पानी भरती है मुक्ति, कोई मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति का कोई आदर ही नहीं है। काशी में और यहाँ हरिद्वार में कुछ कुछ मुक्ति लोग चाहते हैं, इसलिए मुक्ति की तरफ में न जाकर के ब्रह्म की तरफ में न जाकर के ब्रह्म नहीं बनना चाहें। इससे अभी संपात और कोई नहीं है। मैं अपने विषय में फिर आपके आ रहा हूं। एक और भी ऐसे थे जैसे सती जी की गति हुई। एक थे गरुड़ जी, नारायण के वाहन है, उनको अज्ञान नहीं होता। एक समय में रामचंद्र जी लीला कर रहे और लीला करने में मेघनाद ने, रावण के पुत्र ने, उनको शक्ति से सेल मारा, सेल नहीं, उनको नागपाश से लक्ष्मण और राम दोनों को बांध दिया, सांपों से बांध दिए, नाग से, फांस से, एकदम अशक्त हो गए, सारे शरीर में सांप जकड़ लिए। उस समय में राम विवश हो गए, लक्ष्मण जी विवश हो गए लीला से। अरे जिनके नाम से कहां ये मृत्यु भी चला जाता है, मोह शोक चला जाता है, किंतु ये नर लीला कर रहे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, इन लीलाओं का स्मरण करके हम लोगों की दुर्गति न हो, इसलिए। उसी समय में नारद जी ने देखा, अरे हमारे प्रभु को नाग फांस ने जकड़ लिया है, वो भगवान की लीलाओं को जानते हैं, एक बार वो भी छक चुके थे, नारद जी को मोह हो गया था, इसलिए अब उनको माया नहीं व्याप्ती, बस झट गए गरुड़ के यहाँ, गरुड़ जी जाइए, आपको देखते ही उनको सांप छोड़ करके भाग जाएंगे और उनकी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन करके नारद जी के कहने से गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी जहां वहां पर आए देखते ही सांप उनको छोड़ करके भागे डर के मारे। इनको उस समय में आश्चर्य हुआ, ये मनुष्य राम और लक्ष्मण जिनको सांपों ने बांध रखा था और ये विवश हो गए थे, उनको छुड़ा नहीं सके, और मेरे आते ही ये सांप छोड़ करके भागे, तो इनमें क्या प्रभाव है? वो जो निराकार जो ब्रह्म है और अनंत है, सर्व व्यापक ब्रह्म है, वही जैसे सती जी को मोह हुआ था ऐसे इनको हुआ, वो व्यापक ब्रह्म रूप लेकर के कैसे आएगा, और जो आएगा तो उसको सांप कैसे बांध लेंगे, और मेरे आते ही छोड़ करके भाग गए, तो इनमें तो कोई प्रभाव नहीं है, ये कैसे ये प्रभु हो सकते हैं? बड़ी शंका हुई, नारद जी के पास में गए, अरे प्रभु आप तो भक्त हैं, माया को जीतने वाले, मेरी समझ में नहीं आता कि हमको देख करके ये सांप भाग गया और राम को बांध रखा, तो ये राम ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? कहा जी भाई अभी तो मैं बहुत जल्दी बाजी में हूं, आप जरा ब्रह्मा जी के पास में चले जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास में गए तो उन्होंने कहा जी देखो ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम शंकर जी के पास में जाओ, ये सब विद्याओं को जानते हैं। शंकर जी के पास में गए, शंकर जी से मिले तो शंकर जी से कहा जी हमको ये सांप देख करके हमारे छोड़ करके भाग गए राम को, और राम को बांध रखे, ये कैसे ये ब्रह्म हो सकते हैं, व्यापक ब्रह्म कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी भैया देखो अभी मैं रास्ते में जा रहा हूं, अभी फुर्सत नहीं है, इन तो तुमको बतलाऊं, बिन सत्संग न पाव ही प्राणी, जब तक सत्संग में न रहो तब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता। विश्वास होने पर भी यदि सत्संग फिर न करो फिर क्या होगा? फिर माया तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए तुमको जैसा हुआ है अज्ञान और भगवान के इसमें तुमको संदेह जगा है, संदेहात्मा विनश्यति, ऐसा संदेह गुरु के वचनों में और उसमें नहीं होना चाहिए। Intelligence, worldly sense, they cannot make a leg of even a leg of ant. They cannot do anything. But they are false able. So keep thinking about all the false.